Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, chapter 10, verse number 29. Is aadhyatmik gyan mein pravesh karne se pehle guru aur gauranga se kripa ki yachna karte hue mangal acharan karenge taki hum jo adhyayan kar rahe hain uska pura pura labh prapt ho sake jo ki hai Krishna prem ki prapti. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om Akyantimrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruhu Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha. Shri Rupam Sagrajatam Sahakana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parisana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam Sahakana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopisha Gopika Kanva Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho. Adhyay 10, Shlok Sankhya 29. Bhagavan Sri Krishna ke Mukharvind se nikle hue in atyant hi pavitra shabdon ko mere saath saath ucharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain anantaschasmina kana varuno yadasamaham pitruna maryama chasmi yamah sanyamatamaham anantaschasmina kana varuno yadasamaham pitruna maryama chasmi yamah sanyamatamaham anantaschasmina kana varuno yadasamaham pitruna maryama chasmi yamah sanyamatamaham. Shabdat anantas chasmi nakanam. Anant kehte hain anant shesh nak. Cha yani bhi hu me nakanam. Nak yani bahut sare phano wale sarpo me. Varuno yadasamaham. वरुण यानी जल के अधिष्ठाता देव वरुण ने यादसाम अर्थात समस्त जनशरों में अहम मैं हूँ. पितृणाम अर्यमा स्यास्मि, पितृणा यानी पितरों में, अर्यमा यानी अर्यमा, अस्मि यानी मैं हूँ। यमः संयमतामः, यमः यानी मृत्यु का नियामक, संयमता अर्थात समस्त नियमन करने वालों में से अहम मैं हूँ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अनेक फणों वाले गुणों नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोक को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम्। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है विभूति योग, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। भगवान अपने विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में हमें बता रहे हैं और आज भगवान कहते हैं, अनंत चास्मि नागानाम। जैसे कल हमने पढ़ा, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। भगवान ने सर्पों में कहा कि मैं वासुकी हूँ और आज भगवान बता रहे हैं नागानाम, जो अनंत नाग हैं। नाग के बहुत सारे फण होते हैं, जैसे हमने कल भी बात की थी, सर्प का एक ही फण होता है, परंतु नाग जो होते हैं ना, उनके बहुत सारे फण होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो विशाल नाग है वो है अनंत। वो साक्षात भगवान की विभूति है, वो भगवान का फर्स्ट एक्सपेंशन है। नागानाम जो अनंत अनंत जो शेष नाग है, वो भगवान बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान बलराम जो है वो अनंत शेष, वही लक्ष्मण है, वही नित्यानंद प्रभु है, वही वो जो अनंत शेष है वो भगवान की हर प्रकार से सेवा करते हैं। वास्तव में भक्तों, हम भगवान की जो भी सेवा करते हैं वो अनंत शेष के द्वारा पवित्र होकर फिर भगवान को प्राप्त होती है। अगर हमारी सेवा में से अगर हम अनंत शेष यानी बलराम जी को, नित्यानंद जी को अगर हम प्रसन्न करते हैं, तो वो सेवा हमें हमारी जो है वो भगवान तक पहुंचती है। हम कोई भी सेवा, अगर हम छोटी सी अगरबत्ती भी भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो अनंत शेष के द्वारा उन तक पहुंचती है। और अनंत शेष भगवान के सबसे महान भक्त हैं, क्योंकि भगवान के भक्त के विषय में भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों की पहचान क्या है, मत चिता मत कथा प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त की पहचान ये है कि वो सदैव मेरे विषय में बात करते हुए बहुत आनंदित तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद उसको मिलता है, संतुष्टि मिलती है। कब? जब वो बोधयंता परस्पर, जब कोई भी उसके सामने होता है या नहीं, मतलब कंटिन्यूस वो मेरे बारे में, मेरे विषय में बात करने में उसको आनंद आता है। तो आप जानते हो, हम जीव भले कितना भी गुणगान करें भगवान का, परंतु एक ही तो जुबान है, हम इतने तुच्छ जीव, एक जिह्वा से बाला भगवान की महिमा का, भगवान के वैभव का, भगवान की विभूतियों का क्या बखान करेंगे। परंतु उन बखान करने वाले शुद्ध भक्तों में सबसे महान अनंत शेष, क्योंकि वो हजार फन है, उनके हजार मुख हैं, और अपने हजार मुखों से हर क्षण भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं, भगवान की महिमा का उच्चारण करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। इसलिए यह संसार जो है वह, उसके अंदर जो वायु बहती है ना, वो अनंत शेष के मुखारविंद से, जो भगवान के पवित्र नाम जो उच्चारण होता है ना, उसके द्वारा ये वायु पवित्र होती है, और वह वायु के द्वारा जीव संसार पवित्र होता है। एक बार एक शुद्ध भक्त था, भगवान का भक्त था, और वो जा रहा था शौच इत्यादि करने के लिए। सुबह को जा रहा था और उसने जनेऊ जो है वो अपने कान पे रखा। रास्ते में उसकी भेंट एक विद्यार्थी से हुई। विद्यार्थी ने कहा, राम राम साधु बाबा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बात नहीं की, और वो चले गए शौच इत्यादि करने के लिए। और फिर जब वापस वो आए स्नान और सब करके, तब वापस से उसी विद्यार्थी से बात हुई। तब उस विद्यार्थी ने कहा, राम राम साधु बाबा। तब उस साधु ने कहा, राम राम बेटा। तब उस विद्यार्थी ने पूछा, साधु बाबा, जब आप जा रहे थे उस समय भी मैंने आपको राम राम कहा, परंतु उस समय आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, और अभी दे रहे हो, ऐसा क्यों? तब उस साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटा, मैं पहले शौच करने के लिए जा रहा था, तो मैं अपवित्र स्थिति में था, तो इसकी कारण जो है वो मैं भगवान का नाम नहीं उच्चारण करना चाह रहा था। अभी मैं स्नान करके आया हूँ तो मैं पवित्र हो गया हूँ, इसलिए मैं अब भगवान का नाम ले सकता हूँ। तब उस विद्यार्थी ने पूछा, अच्छा, अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे शौच, सब लोग को पता होता है जब जीव मल त्याग करता है तो अपवित्र अवस्था में होता है, तो बोला, आप पवित्र कैसे हुए? बोला, जब मैंने जल से स्नान किया तो मैं पवित्र हो गया। अच्छा, तो फिर जल, अगर आपने जल में स्नान किया अब तो जल अपवित्र हो गया होगा, फिर अब दूसरा कोई उसमें स्नान करेगा वो तो पवित्र नहीं होगा, क्योंकि आपका जिसके साथ अपवित्र वस्तु का जिसके साथ स्पर्श हो गया तो वो भी तो अपवित्र हो गए ना। तब उस साधु ने समझाया, नहीं बेटा, जल जो है, क्योंकि हवा के साथ, हवा जब बहती है, वायु का प्रवाह होता है, तो उसके साथ साथ जल पवित्र होता है। तब उस विद्यार्थी ने पूछा, फिर वायु को पवित्र कौन करता है? तब उसने कहा, क्योंकि वायु में अनंत शेष जो है वो भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं का, भगवान का गुणगान अपने हजारों फणों से करते रहते हैं। इसके कारण वायु इतनी शुद्ध हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है कि वो जल को पवित्र करती है। तब उस विद्यार्थी ने हंसते हुए कहा, साधु बाबा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तभी हम पवित्र होंगे, चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, तभी हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, तभी हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, हमारे आत्मा की मलिनता, पवित्रता समाप्त होगी। तब उस साधु ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हमें हर स्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए, कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें हम भगवान का नाम ना लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसी अवस्था में हमें मृत्यु के देव यमराज लेने के लिए आ जाएंगे, और हम सोचेंगे इस अवस्था में तो हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, फिर तो हमारी मुक्ति कभी नहीं होगी, हमें कभी कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ने कहा, यम यम आप स्मरण भावम, जिस इसका नाम लेते हुए, जिस इसको स्मरण करते हुए आप इस त्यजत्यंते कलेवरम, इस शरीर को त्यागोगे, वही अवस्था को आप प्राप्त करोगे। तब यह निश्चय हुआ कि हर एक क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए, जो ये अनंत शेष है वो हर समय भगवान का नाम लेते हैं, और उस भगवान के नाम के पावर पावर के कारण ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर 14 लोक हैं, वो पूरा ब्रह्मांड उस अनंत शेष के ऊपर एक राई के दाने के बराबर, मतलब वो सदैव इस अनंत शेष जो है वो अब इस पृथ्वी को राई के दाने के बराबर अपने सर पर धारण करते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि पूरे ब्रह्मांड को मैंने उठाया हुआ है अपने सिर के ऊपर, लेकिन उनको ऐसा ही लगता है कि छोटा सा राई का दाना मेरे सिर पर खड़ा है। तो यही अनंत शेष, जब जब भगवान उनको आदेश करते हैं तो कभी बलराम बनकर, कभी लक्ष्मण बनकर, तो कभी नित्यानंद प्रभु बनकर इस भौतिक जगत में आते हैं और भगवान के इन पवित्र नामों का प्रचार करते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते थे कि जो कृष्ण प्रेम का गोडाउन है ना, वो पूरा गोडाउन मेरे अंडर में है, और जैसे ही मुझे गौरंग महाप्रभु आदेश करेंगे, मैं उस कृष्ण प्रेम के गोडाउन का दरवाजा तोड़कर इस पूरे विश्व में कृष्ण प्रेम की बाढ़ ला दूंगा। तो ये अनंत शेष अपने हजारों मुखों से सदैव भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करते रहते हैं। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं नागा अनंत शास्त्री नागा नाम, नागों में मैं अनंत हूँ। और आगे कहते हैं वरुणो याद सामहम, वरुण देव जो जल के देवता हैं, वरुण देव जो समस्त जल के जितने भी जीव हैं उनमें जो सबसे महान है वो है वरुण देव। तो भगवान कहते हैं वो वरुण देव मैं हूँ। वास्तव में भक्तों, ये वरुण देव भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं। एक बारी क्या हुआ, नंद महाराज जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री हैं, एक बार उन्होंने एकादशी का उपवास रखा। जब उन्होंने एकादशी का उपवास रखा तो उन्होंने सोचा कि जो द्वादशी का पारायण करूंगा ना, वो बहुत ही विधि के साथ करूंगा। तो वो सब कुछ नंदगांव से कुछ ग्वालों को लेकर और कृष्ण बलराम को लेकर समुद्र के तट पर गए, तो उन्होंने देखा अभी तक रात समाप्त नहीं हुई थी, जैसे ब्रह्म मुहूर्त अभी तक उदय हुआ नहीं था और रात समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन नंद महाराज की आंख खुल गई। तो नंद महाराज ने सोचा कि अभी मैं स्नान कर लेता हूँ, लेकिन वो समय ज्योतिषियों के अनुसार स्नान करने के लिए उपयुक्त नहीं था, यानी कि वो अभी तक काल नहीं आया था जिस काल में हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ये समय सही नहीं था समुद्र के अंदर स्नान करने के लिए। तब फिर भी नंद बाबा ने स्नान किया। ये असल में भगवान की योजना होती है, जो भी हो रहा होता है। अभी आप कोई प्रश्न है इसके ऊपर, ये भगवान की लीलाएं है ना, वो सब भगवान की योजना के अनुसार, क्योंकि वरुण देव को बहुत इच्छा थी कि क्योंकि मेरा तो कभी इस भौतिक जगत में जन्म होता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अब छोटे से बालक बनकर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो मैं उस स्वरूप में उनकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन अब भगवान क्यों जाएंगे समुद्र में, कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना। तो उस समय नंद महाराज को समुद्र में स्नान करते हुए वरुण देव के दूतों ने देख लिया। फिर उन्होंने, अब दूत लोग उनको क्यों पकड़ेंगे, कोई रूल को तोड़ेंगे तभी तो पकड़ेंगे ना, फिर क्योंकि उन्होंने समय से पहले स्नान किया था तो दूत उन्हें पकड़ गई, जो वरुण देव के दूत है ना, वो उनको पकड़ के वरुण देव के पास लेके गए। और यहाँ पर जब सुबह सब उठे, सारे गोप और भगवान कृष्ण बलराम सब उठे, तब उन्होंने देखा नंदराज तो है ही नहीं, सब परेशान हो गए, सारे ग्वाल बाल जो गोप हैं वो सब इधर उधर ढूंढने लगे, सब परेशान हो गए कि आखिर नंद बाबा चले कहाँ गए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वो समुद्र के अंदर चले गए और बलराम जी सबको आथत देने लगे कि आप लोग चिंता मत करो, कृष्ण जा रहे हैं तो अवश्य नंद बाबा को ढूंढ के लाएंगे। तो वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण गए वरुण देव के लोक में, ये समुद्र के अंदर, वहां पर वरुण देव ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तब इतना प्रसन्न हुए अपने नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारे और उनका बहुत स्वागत किया, बहुत ज्यादा स्वागत किया, उन्हें प्रसाद खिलाया और फिर उनसे याचना की कि भगवान आप मेरे दूतों का जो ये अपराध है नंद बाबा को लेकर आए हैं, आपको कष्ट दिया, इसके लिए आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा, परंतु ये मेरी इच्छा थी और आपकी ही योजना से मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। मैं आपका स्वागत करना चाहता था, आपकी सेवा करना चाहता था, आपके दर्शन करना चाहता था, इसी के कारण आपने यह योजना बनाई होगी। आप बड़े महान हैं कृष्ण। तो इस वरुण देव के द्वारा कृष्ण का ऐसा स्वागत देखकर नंदराय जी तो चकित हो गए कि मेरे बेटे कृष्ण का इतना स्वागत, इतना भव्य स्वागत कर रहे वरुण देव, तो बहुत हैरान हुए। अब तब है ना देखा जब कृष्ण ने कि नंद बाबा बहुत ज्यादा चकित हो रहे, तब वरुण देव को इशारे से कहा ठीक है, मतलब आप इतना ज्यादा भी मेरी सेवा या मेरी प्रशंसा नहीं करो, ये मेरे बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसके बाद नंद बाबा को लेकर भगवान श्री कृष्ण बाहर आए, तभी नंद बाबा बाहर आके भी सबको बताया भाई कृष्ण की तो बहुत महानता है, बहुत जल के देवता वरुण देव भी उसका स्वागत करते हैं, यही कृष्ण। तभी सारे गोपकाल कहते थे हाँ नंद बाबा कृष्ण कोई साधारण नहीं है, जब ये छोटा था तभी हम सारे देवता लोग इनके दर्शन करने आते थे और हम तब से ही देख रहे हैं कि कृष्ण चमत्कारी है। तो इस तरह से वरुण देव जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और भगवान कहते हैं कि जलचरों में वरुणो याद सामहम, और आगे कहते हैं पितृणाम अर्यमाश्चास्मि। पितृ जो है जैसे कुछ लोग, एक पितरों का एक अलग लोक होता है, कुछ लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, कुछ कुछ देवताओं के पास जाते। भगवान बताते 9.25 में यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृ व्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो पिमा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के लोक में जाते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों के लोक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पितरों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो बस पितरों की ही पूजा करते हैं, मजारे बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो उनके पितर मर जाते हैं ना उनके फोटोज लगाते हैं, उनकी उनमें बहुत आसक्ति होती है। तो जब भी उनसे कोई प्रार्थना भी उनको करनी होती है ना तो अपने पितरों के साथ करते हैं। तो ये जो अर्यमा है वो कौन है, कंट्रोलर ऑफ द पितृलोक, पितृलोक का कंट्रोलर है। वैसे जो पुत्र होता है, जो संतान होता है, उसका ये धर्म है कि वो पितरों की सेवा करे, जब उनकी मृत्यु भी हो जाए तो भी ये पुत्र का धर्म होता है कि उनको श्राद्ध पिंड इत्यादि दान करे। शास्त्र कहता है पितृधेरा पितृ उधरे इति पुत्रा, जो पितरों का उद्धार करे वही पुत्र कहलाने के योग्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पितरों को ही भगवान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसी से हमारे पितरों का उद्धार होता है। तो उनमें जो अर्यमा है वो सबसे विशेष उस पितृलोक के स्वामी है, और यह अर्यमा जो है वही जब भगवान यमराज जब इस भौतिक जगत में आए थे विदुर जी का स्वरूप लेकर, तब ये अर्यमा जो है वो यमराज का भी कार्य कर रहे थे, पितृलोक को भी संभाल रहे थे और यमराज के लोक को भी संभाल रहे थे। तो ये बहुत ही महान भगवान के भक्त हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं पितृणाम अर्यमाश्चास्मि, आगे भगवान बहुत ही सुंदर बता रहे हैं यमः संयमतामहम, संयमतामहम यानी जो नियमन करने वाले हैं, जो कंट्रोलर करने वाले हैं, किसको कंट्रोल करने वाले हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डेथ, मृत्यु के डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल करने वाले हैं वो यमराज, वो कंट्रोलर, महान कंट्रोलर में हूँ। विशुद्ध भक्तों, ये यमराज जी भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, यहाँ तक कि जो 12 महाजन हैं जिनके संरचनों के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना होता है, जिनके आदेशों का पालन करके ही हम वास्तविक धर्म का पालन कर सकते हैं, उनमें यमराज जी का नाम आता है। यमराज जी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं और भगवान ने उन्हें यह सेवा दी है कि जो संसार के अपराधी जीव हैं उन्हें नरक में यातना दें, नरक में उनको दंड दें। अब ये दंड वो क्यों देते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में भी हम देखें, जब हम कोई वस्त्र पहनते हैं तो जब वो वस्त्र मेले हो जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, धोने के लिए जो धोबी होता है उसको पटकता है, जोर से पटकता है, उसको मारता है पत्थर पर, ताकि इसलिए नहीं कि वो वस्त्र का बुरा चाहता है, परंतु इसलिए क्योंकि वो उस वस्त्र की मेल खत्म करना चाहता है। उसी तरह से जब जीव कोई अपराध करता है तो वो मलिन हो जाता है, और जब वो यमराज की अदालत में जाता है और यमराज उसे दंड देते हैं तो उसकी अपराध समाप्त हो जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा चांस मिलता है कि वो ऐसा कार्य करें जिससे उसका जीवन जो है वो वास्तविक अपने लक्ष्य की ओर जा सके, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो यह यमराज की बहुत ही कठिन ड्यूटी है, यमराज की सेवा बहुत कठिन है। बाकी जितने भी धाम है ना, आप इस कलयुग में ज्यादातर धाम में ना सन्नाटा लगा होता है, स्वर्ग में बहुत कम लोग जाते हैं, वैकुंठ लोक में तो कोई पंछी भी पर नहीं मारता, एकदम शांति। लेकिन यमराज के पास सारा टाइम भीड़ रहती है, क्योंकि अब इस भौतिक जगत में कलयुग में सारा टाइम लोग जो है ना अपराध करते रहते हैं, सब अपराध करते रहते हैं, तो जिसके कारण उन्हें यमपुरी जाना पड़ता है। और यमराज जी बहुत व्यस्त होते हैं, यमराज के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे जीव, सब जीवों के कर्मों का लेखा जोखा देखना होता है, उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देना होता है, तो यमराज जी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। एक बारी यमराज जी के दूत और विष्णु दूतों में संवाद हुआ, बहुत ही सुंदर संवाद है भागवतम महापुराण में। विष्णु दूत यमराज से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जब विष्णु दूत अजामिल पापी को बचाने के लिए आए थे तो उनकी कांति को देखकर यमदूत डर गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में विष्णु दूत को नहीं देखा था। वो तो यही समझते थे कि जो यमराज हैं मेरे, हमारे स्वामी जो यमराज हैं, वही वास्तव में सबके कर्ता धरता हैं, क्योंकि देख रहे थे सारे अपराधी आते, पनिशमेंट उनको दंड वही देते हैं, तो उनको देखकर चकित रह गए। इतने सुंदर विष्णु दूत, चार चार, उनका रंग विष्णु जी की तरह ही गहरा रंग था, और चार भुजाएं, और उनके पास अस्त्र शस्त्र, इनको देखकर वो बिल्कुल विस्मित हो गए। बहुत सारे प्रश्न पूछे उन्होंने यमदूतों से कि आप अपने आप को धर्मराज के दूत कहते हो, आप धर्मराज यमराज के दूत हो, बता, तुम्हें पता भी है कि धर्म कहते किसे हैं? आप किस प्रमाण के साथ इस अजामिल को लेके जा रहे हो? पता है तुम्हें धर्म किसे कहते हैं? तब वो कहते हैं, हाँ, धर्म उसे कहते हैं जो वेद में लिखा है, वेद प्रणहितो धर्म, जो शास्त्र में लिखा है वो धर्म है। और शास्त्र कहाँ से आया, वेद कहाँ से आया? वे कहते हैं वेदो नारायण साक्षात, जो नारायण ने कहा है वही वेद है। तब उन्होंने कहा, आपको पता है भगवान किसे कहते हैं? यमदूत से विष्णु दूत पूछ रहे हैं, और उनको ना जैसे डर रहे हैं, उनसे डर लग रहा है, जैसे चोर जब पुलिस को देखता है तो कैसे डर जाता है, उसी तरह से वो कांप रहे हैं और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो विष्णु दूत यमदूतों से कहते हैं कि आपको पता है भगवान किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर अपने धाम में, अपने स्वभाव में स्थित होता है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को स्वीकार करके सृजन पालन और ब्रह्मांड का प्रलय करता है, वही भगवान है। तो ये समझ रहे थे कि ये भगवान हमारे स्वामी यमराज हैं, लेकिन अभी विष्णु दूतों ने उनको बताया नहीं था, लेकिन वो वेद को जानते थे, शास्त्र को जानते थे वो, लेकिन ये नहीं पता था कि शास्त्र में जो भगवान है वो कौन है, और भगवान का यदि नाम लिया जाता है तो क्या होता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे, और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने पूछा कि आप इस अजामिल को पापी कहकर लेके जा रहे हो, आप धर्मराज के दूत हो, तो हमें ये बताओ कि धर्मराज तो अपने धाम संयम मुनिपुरी में रहते हैं, आप भी पापियों को घसीट घसीट कर लेते जाते हैं, अब धर्मराज को पता कैसे चलता है कि किस पापी ने कितना अपराध किया है? धर्मराज को कैसे खबर पड़ती है कि कौन पापी किस समय कौन सा अपराध कर रहा है। तब यमदूत बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यमदूत कहते हैं कि इस संसार का जीव हमेशा यह सोचता है कि मैं अपराध कर रहा हूं सबसे छुप के, कोई मुझे नहीं देख रहा है तो भला मुझे दंड कैसे मिलेगा, ये उसकी अपनी विचारधारा है। परंतु यमराज इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने सारे लोगों के पीछे 13 लोगों को लगा दिया है, प्रत्येक मनुष्यों के पीछे 13 कैमरा फिक्स कर दिए हैं, 13 साक्षी हैं हमारे हर एक कार्य के। जैसे अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा मॉल होता है उसमें बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं और सबका कनेक्शन मालिक के ऑफिस में होता है, टीवी लगा होता है और सब रूम्स में जो कुछ हो रहा है वो सब उसको पता चलता है, ऐसा होता है ना। उसी तरह से हम सब जीवों के पीछे 13 कैमरा फिक्स है, हम सब जीवों के ऊपर 13 कैमरा फिक्स है और उसका वायरलेस कनेक्शन है यमराज जी के पास, और यमराज जी वहां पर बैठे बैठे अपने धाम में सब कुछ देख रहे हैं। अब इस भौतिक जगत के जीव की छोटी सी बुद्धि भी ऐसा कार्य कर सकती है, तो यमराज का तो बहुत ही सुव्यवस्थित ये कार्यक्रम है। तो ये सारे जो कैमरा है उनसे यमराज जी जो है वो सब देखते हैं। तब यमदूतों से पूछा विष्णु दूतों ने, वो कैमरा कौन से हैं, कहीं वो गलती नहीं कर सकते। तब बोला, नहीं, इन कैमरों से कोई गलती नहीं होती। बोला, कौन कौन से हैं जरा बताओ। वो बोले, सबसे पहला कैमरा है सूर्य। कोई भी जीव सूर्य से छुपकर तो कार्य नहीं कर सकता, सूर्य की जो किरणें होती है ना वो साक्षी होती हैं। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हर समय सूर्य थोड़े ना होता है। तब बोला, दूसरा कैमरा है चंद्रमा, या तो सूर्य की रोशनी में या फिर चंद्रमा की रोशनी में कार्य करेगा। तब विष्णु दूतों ने कहा, परंतु कोई अगर छिप कर कार्य करे तो। तब बोला, पृथ्वी, कभी कोई ऐसी जगह तो नहीं होगी जहां पर पृथ्वी नहीं हो। तो तीसरा कैमरा है पृथ्वी, तो वो पृथ्वी पर रहकर कार्य करेगा। तब बोला, अगर कहीं पर वो पृथ्वी से भी हटकर कार्य करे तो, जैसे जल में करे। तो बोला, आकाश, हर जगह आकाश होता है तो आकाश से तो नहीं बच सकता। फिर बोला कि कहीं एकदम गुफा में चला जाए तो फिर वहां पर। तो बोला, वायु, वायु के बगैर तो सांस नहीं ले सकता, इसलिए उस जगह पर वायु का होना अनिवार्य है, तो फिर वायु है दूसरा कैमरा। तब बोला कि और इसके अलावा, बोला इसके अलावा भी इंद्रियां, ये जो आपकी अपनी इंद्रियां जिनके द्वारा आप कार्य करते हो वो भी यमराज की दी हुई, ये साक्षी देंगे यमराज को, हाँ मेरे द्वारा ये अपराध किया गया था। उसके बाद बोला दूसरा, इसके आगे सातवां कैमरा है दिन, आठवां है रात, नौवां है अग्नि, दसवां है संध्या, और ग्यारहवां है ये जो दसों दिशाएं हैं ना, जैसे चार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चार उसके कोने ऊपर नीचे, तो ये दसों दिशाएं। उसके अलावा जल, और तेरहवां कैमरा है काल। ये सारे यमराज जी के कैमरा हैं जो हर समय हर एक जीव पर नजर रख रहे होते हैं कि वो क्या कार्य करता है, और साक्षी देते हैं वहां पर। यमराज जी डायरेक्ट से वो सारा का सारा जो जिस समय हो रहा होता है वो सारा का सारा उनके ऑफिस में दिख रहा होता है। और भक्तों, चौदहवां कैमरा बहुत ज्यादा मजबूत है, वो कभी गलती नहीं कर सकता, और उसके उससे दूर जाकर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मनुष्य चाहे कितना ही ज्यादा बुद्धिमान क्यों न हो जाए, हृदय के अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है वो साक्षी बनते हैं हमारे कार्यों का। जीव सोचता है कि अपने कर्मों का उसे कभी दंड नहीं मिलेगा, वो अपराध करते रहता है, लेकिन वो सारे अपराध एक एक जो हम कार्य कर रहे होते हैं, हर एक अपराध का साक्षी बनता है, ये पूरी प्रकृति साक्षी बनती है, हर एक जीव के हर अपराध को लिखा जाता है। चित्रगुप्त एक जरा जरा से अपराध को लिखते हैं वहां पर, और एक एक अपराध का हिसाब किताब होगा हमारे। तो इन 13 साक्षियों के द्वारा धर्मराज जीव के पापों को देखकर उसको दंड देते हैं, और किस जीव को कौन सा दंड मिलना चाहिए उसका निर्णय करते हैं। तो भगवान कहते हैं, यमः संयमतामः, कंट्रोल करने वालों को, नियमन करने वालों में मैं यमराज। और शीला प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं, यानी बहुत ही करीबी है, दूर नहीं है, 99 योजन का सफर है। और जीव जब अपराध करके मृत्यु प्राप्त करता है, तो मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां पर घसीट के लेके जाते हैं यमदूत, और उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं, नरक को में डालते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये यमराज मेरा ही प्रतीक है, मेरा प्रतीक है, तभी सब जीवों को पुनः चांस मिलता है। एक दफा उनको दंड मिलता है, फिर पुनः चांस मिलता है कि वो अपने जीवन को वास्तविक जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो यदि हमें यमराज के दंड से बचना है, तो फिर हमें सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय की मलिनता समाप्त हो जाती है, अपराध करने की वृत्ति समाप्त हो जाती है, और भगवत प्राप्ति होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।